ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंध 8 अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 31। श्रीराजो वाच बादरायण ये तत्ते श्रोतुमिच्छामहे वयम् हरिर्यथा जगत्पतिम् ग्राहग्रस्त ममुच तत्कथासु महत् पुण्यम् धन्यं स्वस्तयन् शुभम् यत्र यत्र तमः श्लोको भगवान् गीयते हरि। श्रीसुत उवाच परीक्षितेवं स तु बादरायणी प्रायोपविष्टेन कथा सुचोदित उवाच विप्रा प्रतिनन्द पार्थिवम् मुदा मुनीनां सदसि स्म शृण्वताम् परीक्षितेवं स तु बादरायणी प्रायोपविष्टेन कथा सुचोदित उवाच विप्रा प्रतिनन्द पार्थिव मुदा मुनीनां सदसि स्म शृण्वताम् श्रीशुकुवाच आसीत् गिरीवरो राजन् त्रिकूट इति विश्रुत शिरोदेनावृत श्री रुत श्री
शिरो देनावृत श्रीमा
मान्यो जनायुत मुच्छित
मान्यो जनायु मुच्छित।
बोलिए ओम ज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानान जन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णववंश श्रीरूपं सग्रजातम् सह गण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्ययेवश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा वंशी विभूषित करा नवनीर दाभा पीतांबर धरुण बिंब फल धरोष्टा पूरणेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्व अहम् न जाने। नमो परस्मे पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्था न निरोधलीलया ग्रहीत शक्ति त्रितयाय देहिना अंतर्भवाया नुपलक्षवत्मने प्रचोदिता जे नपुरा सरस्वती वितन्वताज ससतिं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रा दुर्भूत किलास्यत समे ऋषीणां ऋषभ प्रसीदता भूर्तेर्महद्भिः यैमा पुरो विभु निर्मायशेते यदमु पुरुष पुरुष भुङ्क्तेर्गुणनशो रसषोडशात्मक सोलङ्क श्रेष्ठ भगवान् वचांसि मे।
हरे कृष्ण। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित पीछे का आवाज बंद हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रति बुधवार को हम यहाँ पर भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। ये भागवत कथा परम पवित्र है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मंत्र महामणि विषय व्याल के, मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। जैसे किसी व्यक्ति को सर्प डंक मार ले और जहरीला सर्प यदि किसी व्यक्ति को डंक मारता है तो उस डंक को मिटाने के लिए, उस जहर को दूर करने के लिए, आप लोगों ने देखा होगा दो उपाय करते हैं। सर्प के डंक को, सर्प से लगे हुए जहर को दूर करने के लिए मंत्र उच्चारित किया जाता है। मंत्र के द्वारा उस सर्प के विष को उतारा जा सकता है। और मंत्र के साथ और एक उपाय है सर्प के जहर को उतारने के लिए। जिस व्यक्ति के पास सर्प मणि है, सर्प के मुंह में एक मणि होता है, वह मणि यदि किसी को प्राप्त हो जाए और वह मणि जहां पर सर्प डंक मारा है उस जगह पर उस मणि को घिसा जाए, तब भी वह सर्प का डंक मिट सकता है। तो जैसे सर्प के डंक को दूर करने के लिए, सर्प के लगे हुए जहर को दूर करने के लिए मंत्र और महामणि का प्रयोग किया जाता है, वैसे ही संसार में हमें डंक लगा हुआ है। संसार इस कलयुग के काल रूपी हमें डंक लगा हुआ है और सब लोग को जहर चढ़ा हुआ है। और यह जहर है काम क्रोध लोभ मोह मद ईर्ष्या इत्यादि का। यदि इस जहर से हम मुक्त होना चाहते हैं, जैसे सर्प के जहर से मुक्त होने के लिए मंत्र का उच्चारण किया जाता है और सर्प मणि घिसा जाता है, वैसे कलयुग के इस महाप्रभाव से मुक्त होने के लिए भगवान की कथा ही एकमात्र समर्थ है। मंत्र अर्थात स्वयं मुंह से भगवान का नाम यदि लेते हैं तो हम इस कलयुग के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। और मणि अर्थात दूसरे के मुख से यदि हम कथा सुनते हैं तो भी हम इस कलयुग के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। तो भगवान का नाम, भगवान की कथा इस कलयुग के दोषों से मुक्त कराने वाली है। और इतना ही नहीं, मेटत कठित कुअंक भालके, भगवान की कथा हमारे भाल में जो नसीब लिखा हुआ है। व्यक्ति जब जन्म लेता है तो अपना नसीब लेकर आता है। आपने सुना होगा हमारे नसीब में जो है वही होकर रहता है। यदि किसी के नसीब में बहुत दुख लिखा हुआ है, बहुत दुख और दर्द है, परंतु वह व्यक्ति भगवान की कथा सुनता है तो वह अपने भाल में रहे हुए नसीब को भी बदल सकता है। नसीब को कोई बदल नहीं सकते हैं, परंतु भगवान की भक्ति करने से। ब्रह्मा जी कहते हैं, संसार में चींटी से लेकर इंद्र तक कोई भी व्यक्ति अपने नसीब को नहीं बदल सकता है। इंद्र भी यदि गलत काम करता है तो उसे उस गलत काम की सजा भुगतनी पड़ती है। परंतु यदि कोई भगवान की कथा सुने, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा, भगवान की कथा सुनने से हम हमारे नसीब को बदल सकते हैं। हमारे जीवन में यदि दुख लिखे हैं परंतु भगवान की कथा सुनते हैं तो हम सभी दुखों से मुक्त हो सकते हैं। मान लीजिए हमारे जीवन में पहाड़ जितना दुख आने वाला हो परंतु भगवान की कथा और भगवान की भक्ति करते हैं तो वह पहाड़ जितना दुख राई के सरसों के दाने के समान हो जाता है। भगवान की भक्ति में, भगवान की कथा सुनने में यह प्रभाव है। हम सबका बहुत बड़ा और परम सौभाग्य है कि प्रति बुधवार को हम यहाँ पर भगवान और भगवान के भक्तों की कथा से रचित श्रीमद् भागवतम कथा का श्रवण कर रहे हैं। और इस भागवत कथा के अंतर्गत अष्टम स्कंद के प्रथम अध्याय की कथा हम श्रवण कर रहे हैं। परीक्षित महाराज ने प्रारंभ में ही प्रश्न पूछा है कि प्रभु मन्वंतर में भगवान के जितने अवतार हुए उस भगवान के अवतारों की कथा सुनाइए। सुखदेव गोस्वामी मन्वंतर में होने वाले भगवान की कथा सुनाने लगे। सबसे पहले मन्वंतर में भगवान ने यज्ञ अवतार लिया, स्वयंभू मनु, स्वयंभू मन्वंतर में यज्ञ अवतार, और दूसरे मन्वंतर में भगवान ने दूसरा अवतार लिया, तीसरे मन्वंतर में तीसरा, और चतुर्थ मन्वंतर में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं कि चतुर्थ चौथा मन्वंतर का राजा तामस हुआ, जो उत्तम का भाई और प्रियव्रत का पुत्र था। और तामस मन्वंतर में भगवान श्री विष्णु ने हरिमेधा नाम के व्यक्ति की पत्नी हरिणी के गर्भ से जन्म लिया। क्योंकि भगवान श्री विष्णु ने हरिणी के गर्भ से जन्म लिया इसलिए भगवान का नाम हरि हुआ। वैसे तो भगवान का नाम जो हरि पहले से ही है, परंतु हरिणी के गर्भ से जन्म लेने के बाद भगवान विख्यात हुए। और सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को संक्षिप्त में कह दिया, परीक्षित चौथे मन्वंतर में भगवान ने हरिणी के गर्भ से जन्म लिया, उनका नाम हरि हुआ। और इस भगवान हरि ने इस चतुर्थ चौथे मन्वंतर में एक मगरमच्छ के मुख में फंसे हुए हाथी का उद्धार किया, क्योंकि हाथी भगवान का परम भक्त था। इतना कहके सुखदेव गोस्वामी पांचवें मन्वंतर की कथा प्रारंभ करे उसके पहले ही परीक्षित महाराज हाथ पर करके कहते हैं, प्रभु एक मिनट, मेरा एक प्रश्न है, आप आगे मत बढ़िए, मेरा एक प्रश्न है। श्री राजोवाच, परीक्षित महाराज ने कह दिया, बादरायण एतत्ते श्रोतु मिच्छामि महे वयम हरि यथा गजपतिम ग्राह ग्रस्त ममूचयत। राजा परीक्षित ने कहा कि हे परम विरक्त चुड़ामणि सुखदेव गोस्वामी, आप मन्वंतर की कथा सुनाते जा रहे हैं परंतु मेरी एक जिज्ञासा हो रही है। देखिए परीक्षित महाराज का चलती हुई कथा को रुकाना यह सिद्ध करता है। परीक्षित महाराज ने पहले कहा था, परीक्षित महाराज ने जिज्ञासा की थी कि मुझे मन्वंतर में होने वाले भगवान के अवतार की कथा सुनाओ। तो सुखदेव गोस्वामी बहुत संक्षिप्त में सुनाते जा रहे थे। और चतुर्थ मन्वंतर में गजेंद्र का नाम जब परीक्षित महाराज सुने तो परीक्षित महाराज की इच्छा हुई कि इस गजेंद्र की कथा सुननी है। इसलिए परीक्षित महाराज कहना चाहते हैं कि प्रभु अब मन्वंतर की कथा आप थोड़ी देर रुका दीजिए और यह गजेंद्र की जो कथा है, यह मगरमच्छ और गजेंद्र उद्धार की कथा कृपया करके सुनाइए। कह रहे हैं, हे बादरायण, सुखदेव गोस्वामी को बादरायण कहा जाता है क्योंकि उनके पिता का नाम था बादरायणी। बदर वृक्ष के नीचे उन्होंने भागवत लिखा था, उनका आश्रम ही बदर वृक्ष था, इसलिए बादरायण कहा जाता है। कहते हैं हे बादरायण, वयम ते एतत् श्रोतुम इच्छामहे। हे सुखदेव गोस्वामी, हम लोग वयम, यहां पर ऐसा नहीं कर रहे कि मैं सुनना चाहता हूं, वयम का अर्थ है बहुवचन, हम लोग। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि हम लोग अब गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनना चाहते हैं। इसे सिद्ध होता है कि परीक्षित महाराज जब सुखदेव गोस्वामी को कह रहे थे कि हम लोग सुनना चाहते हैं, तो सब लोग कहे होंगे हाँ 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 हाँ, गजेंद्र मोक्ष की सुनाओ, मनवंतर की कथा को थोड़ी देर रुकाओ, इसलिए वयम कह रहे हैं हम लोग। वयम एतत्ते श्रोतुम इच्छामहे, हम लोग सुनना चाहते हैं। पूछा क्या सुनना चाहते हैं? हरिर यथा गजपतिम ग्राह ग्रस्त ममुचयत। भगवान हरिर ने ग्रह मगरमच्छ के मुख से गजपति गजेंद्र हाथियों का राजा गजेंद्र का उद्धार कैसे किया, ये हम सुनना चाहते हैं ते आपके मुख से। ते का अर्थ होता है कि हम आपके मुख से, अर्थात हमने पहले भी सुना हुआ है इस कथा को, परंतु आपके मुख से हम फिर से यह कथा सुनना चाहते हैं। वास्तव में भगवान की कथा बारंबार सुनते रहनी चाहिए। ते शब्द यहां पर दिया गया है, इससे जानने मिलता है कि पहले ये लोगों ने कथा सुनी थी गजेंद्र की, परंतु कह रहे हैं अब आपसे ही हम सुनना चाहते हैं। प्राय कई लोगों का प्रश्न होता है कि हम प्रवचनों में जो सुनते हैं वह याद नहीं रहता है। यहां पर बिल्कुल क्लियर लिखा गया है कि हम जो सुनते हैं उसे यदि याद रखना है तो उसे बारंबार बारंबार सुनना पड़ेगा। बारंबार सुनने से, अभ्यास करते रहने से वह बात हृदयगम हो जाती है, हृदय में फिट हो जाती है। तो प्रभु मैं गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनना चाहता हूं, मैं अकेला नहीं, हम सब लोग गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए अब आप गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाइए। तो मान लो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को पूछे कि आप गजेंद्र मोक्ष की कथा ही क्यों सुनना चाहते हैं, आगे भी मैंने मनवंतर की कथा का वर्णन किया, तो और कोई कथा नहीं, गजेंद्र मोक्ष की कथा ही क्यों सुनना चाहते हैं? तब परीक्षित महाराज कहते हैं कि तत् कथा सुमहत् पुण्यम धन्यम स्वस्तयनम शुभम। प्रभु ये जो कथा है महत् पुण्यम, ये गजेंद्र मोक्ष की जो कथा है ये महान पुण्य, महान पवित्र करने वाली कथा है। पवित्र का अर्थ होता है जीव के हृदय में जो वासना है, जीव के हृदय में जो भौतिक इच्छा और कलमश है, इसे अपवित्रता कहा जाता है, कलमश कहा जाता है। और जब जीव के हृदय से यह वासना भौतिक इच्छा निकल जाए और जीव अपने स्वरूप में आ जाए, तब उसे पवित्र कहा जाता है। तो भगवान की कथा सुनने से हृदय पवित्र होता है, और खास परीक्षित महाराज कहते हैं तत् कथासु महत् पुण्यम, गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनने से हृदय पवित्र होता है। सत्य बात है। संसार में और भी कई सारे कार्य हैं जिससे हमारा हृदय पवित्र हो सकता है, जैसे तपसा, ब्रह्मचर्येण, शमेन च दमेन च, त्यागेन सत्य शोचाभ्याम यमेन नियमेन च। तपस्या के द्वारा हम पवित्र हो सकते हैं कुछ मात्रा में, ब्रह्मचर्य के द्वारा हम पवित्र हो सकते हैं, शमेन च हमारे मन को वश में करके पवित्र हो सकते हैं, हमारी इंद्रियों को वश में करके हम पवित्र हो सकते हैं, दान करके भी हम पवित्र हो सकते हैं, सत्य भाषण करके सत्य बोलकर पवित्र हो सकते हैं। परंतु ये जितने भी पवित्रता है, ये सब कार्य करने से हम पूर्ण पवित्र नहीं हो सकते हैं। कितने भी बड़ी तपस्या कर लो, व्यक्ति पवित्र होगा परंतु अल्प मात्रा में, पूर्ण पवित्र नहीं होगा। कितना भी बड़ा कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करे, परंतु वह पूर्ण पवित्र नहीं हो सकता है। इसलिए आप देखो कुछ लोग ब्रह्मचारी बन जाते हैं, घर को छोड़ देते हैं, वैराग्य ले लेते हैं, लाल कपड़े पहन लेते हैं और हरिद्वार जैसे तीर्थ स्थानों में घूमते रहते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी और बड़े बड़े बाल बढ़ाते हैं, पत्नी को त्यागा, पुत्र को त्यागा, धन को त्यागा, घर को त्यागा, परंतु एक गांजा को नहीं त्याग सकते। तपस्या कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं, परंतु पूरा पूरा पवित्र नहीं हुए हैं। क्यों? क्योंकि गांजा भी अभी पी रहे हैं। तो और जितने जितने उपाय हैं यह जीव को पूर्ण पवित्र नहीं करते हैं जितना भगवान की कथा पवित्र करती है। तत्कथा सुमहत पुण्यम। सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज कहते हैं कि प्रभु यह गजेंद्र मोक्ष की कथा पवित्र करने वाली है। वास्तव में हजारों हजारों जन्मों से हमारे हृदय में बहुत बहुत गंदगी भरी हुई है, मैल भरा हुआ है। जैसे ये कपड़े हम रोज सुबह पहनते हैं और शाम को ये कपड़े हम निकाल देते हैं क्योंकि ये बहुत मैले हो जाते हैं, और सुबह इस कपड़े को डिटर्जेंट के द्वारा, साबुन के द्वारा धो करके, पटक करके, पानी के द्वारा इस कपड़े को साफ किया जाता है। एक दिन में यह कपड़ा मेला हो जाता है। हजारों हजारों जन्मों से हमारा यह मन, बुद्धि, अहंकार और हृदय भौतिक भोगों में पड़ा हुआ है। क्या यह मेला नहीं हुआ होगा? निश्चित हमारा हृदय मेला है, गंदगी मैल भरा हुआ है। तो जैसे कपड़े को साबुन के द्वारा धो करके, पटक करके साफ किया जाता है, वैसे हृदय को साफ करने की कोई दवा है? क्योंकि हृदय ऐसा नहीं है, हमारा मन ऐसा नहीं कि पकड़ करके साबुन लगाकर उसे साफ किया जाए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि यदि चित्त रूपी दर्पण को साफ करना चाहते हैं, यदि मन और हृदय को साफ करना चाहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग निर्पापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदाम्बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म संकरम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। यदि हम हृदय को साफ करना चाहते हैं तो भगवान की कथा सुननी होगी। भगवान के नाम द्वारा और भगवान की कथा के द्वारा हम हमारे हृदय को और मन को साफ कर सकते हैं, क्योंकि भगवान का नाम परम पवित्र है। पवित्रम परमम भवान। गीता में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि हे कृष्ण, आप परम पवित्र हो। पवित्रम परमम भवान। और ये मैं नहीं कहता हूं, आहुत्वाम ऋषिया सर्वे देवर्षि नारद तथा असित देवल व्यास स्वयं चेव ब्रविषि में। बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े साधु संत ये सब लोग कहते हैं कि आप परम पवित्र हो। और ऐसे परम पवित्र भगवान की कथा यदि कोई सुनता है तो वह व्यक्ति पवित्र हो जाता है। परीक्षित महाराज कहते हैं तत् कथासु महत् पुण्यम। प्रभु गजेंद्र की कथा सुनने से व्यक्ति पवित्र हो सकता है। और केवल पवित्र नहीं, पवित्र होने के साथ साथ धन्यम। भगवान की कथा सुनने से धन्यम का अर्थ होता है धन प्राप्त होता है। कुछ लोग सोचेंगे कि पवित्र होकर क्या मिलेगा, कुछ फायदा भी होना चाहिए। तो कहते हैं तत् कथासु महत् पुण्यम। कथा पवित्र करने वाली है और साथ साथ धन्यम, धन देने वाली भी। धन दो प्रकार का होता है, एक तो है भौतिक धन। भौतिक धन अर्थात संसार का धन, जिसके पीछे हम सब लोग दौड़ रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, गधे की तरह, बैल की तरह। कथा सुनने से धन निश्चित मिलता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से। आप देखो आज इस संसार में कितने लोग ऐसे हैं जो केवल कथा करके ही अपना जीवन चलाते हैं। बड़े बड़ी फैक्ट्री और बड़े बड़े बिजनेस करके व्यक्ति उतना पैसा नहीं कमाता है जितना व्यक्ति एक कथा करके कमा लेता है। हमने तो सुना है कुछ कुछ ऐसे वक्ता है जो 7 दिन कथा करने का 10 लाख, 15 लाख, 20-25 लाख रुपया लेते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन भी इतना नहीं कमा सकते हैं जितना कथा करने वाले कमाते हैं। हालांकि मैं यह नहीं कहता हूं कि पैसे कमाने के लिए कथा करनी चाहिए, यह तो बिल्कुल गलत चीज है। जो व्यक्ति पैसे लेकर कथा करता है वह व्यक्ति व्यक्ति नहीं है। वह कथाकार वो भगवान का भक्त नहीं है। भगवान का नाम लेने के लिए कोई पैसा ले रहा है। ऐसे लोगों के मुख से यदि कथा सुना भी जाए तो जीवन परिवर्तन नहीं हो सकता है। आप देखो संसार में कुछ कुछ लोगों की कथा में लाखों लोग जुटते हैं, हजारों लाखों लोग जुटते हैं और 7 दिन कथा चलती है, रातों भर लोग गाना बजाना करते रहते हैं, परंतु हृदय परिवर्तन एक व्यक्ति का भी नहीं होता है। वही चाय कॉफी सिगरेट पीते रहेंगे, परंतु आप देखिए यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं। हमारे इस्कॉन संस्था में इस्कॉन का जहाँ पर प्रवचन होता है बहुत कम लोग होते हैं, परंतु हृदय परिवर्तन होता है। एक छोटा सा बालक को भी पूछा जाए कि आप यह चाय और कांदा लहसुन खाओ तो वो कह देगा नहीं प्रभु ये तो नहीं खाना चाहिए। इस्कॉन में आने वाला एक 5 साल का बालक भी जान लेता है कि यह गलत काम है, परंतु और अलग अलग जगह पर जो जाते हैं वो बूढ़े हो जाते हैं, 60 साल के बाल पक जाते हैं, परंतु यह नहीं जान सकते हैं कि क्या सत्य है क्या झूठ है। मैं कह रहा हूं कि कथा सुनने से धन मिलता है, सुनाने वाले को तो देख ही रहे हैं लोग ले रहे हैं, सुनने वाला भी श्री को प्राप्त होता है, भगवान की कृपा उन पर बनी रहती है। तो ये तो हुआ भौतिक धन। वास्तविक यहां परीक्षित महाराज धन का अर्थ करते हैं आध्यात्मिक धन। वास्तविक धन तो है गोलो केर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। भगवान की कथा सुनने से जो धन प्राप्त होता है वह धन है भगवान के प्रति प्रेम रूपी धन। कृष्ण प्रेम यह सबसे बड़ा धन है। यदि कृष्ण प्रेम किसी को हो जाए तो इस संसार का धन सबको मट्टी के समान लगने लगेगा। कृष्ण प्रेम जिसके हृदय में आ जाए, भागवत में लिखा है देहम निजम भारवत, यह देह यह शरीर भार लगने लगता है। तो तत् कथासु महत्पुण्यम, कथा पवित्र करने वाली है, और धन्यम धन देने वाली है, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करने वाली है, और स्वस्तयनम। परीक्षित महाराज कहते हैं यद गजेंद्र मोक्ष की कथा स्वस्तयनम। स्वस्तयन का अर्थ होता है मंगलम, स्वस्ति वाचन मंगल वाचन इत्यादि। भगवान की कथा सुनने से जीवन में मंगल ही मंगल होता है। मंगल का अर्थ क्या होता है, हम सब लोग मंगल शब्द का प्रयोग रोज करते हैं, मंगलाचरण या मंगल। ये जो मंगल शब्द है मूंगी धातु से बना हुआ है। संस्कृत के जितने भी शब्द हैं कुछ धातु से बने हुए हैं, जैसे भजन शब्द भज धातु से बना है, वैसे मंगल शब्द मूंगी धातु से बना हुआ है। और इस धातु का, इस मंगल का अर्थ होता है गति। गति गति के दो अर्थ है। गति का एक अर्थ होता है चलना यात्रा। हम यात्रा करते हैं तो उसमें गति होती है, 40 की स्पीड 50 की स्पीड। और गति का दूसरा अर्थ होता है कि स्थिर हो जाना, वहां पर पहुंच जाना। तो इस संसार में हम लोग देख रहे हैं कि प्रायः सब लोग गति में हैं, सब लोग यात्रा में हैं। गीता में भगवान कहते हैं शरीर यात्रा अपि, यह शरीर यात्रा में है, कभी मनुष्य में, कभी मनुष्य के शरीर में, कभी बैल के शरीर में, कभी गाय के शरीर में, कभी गधे के शरीर में। एक ये मनुष्य की यह यात्रा है। तो प्रायः देखा गया है कि मनुष्य इस यात्रा में दुख भोगत रहा है। यह मनुष्य शरीर में ही व्यक्ति को कितना दुख होता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक। और इस मनुष्य जीवन प्राप्त करके इतना पाप करता है, इतना पाप करता है, तो उसकी गति क्या होती है, नरक में जाता है। यहां पर जो काम कर रहा है उसमें भी दुख भोगता है, और काम करने के बाद जहां पर वो पहुंचता है वहां पर भी यमराज के द्वारा नरक में उसे दुख दिया जाता है। परंतु मंगल कार्य उसे कहा जाता है जो कार्य करने से यात्रा में भी व्यक्ति सुखी रहे, और यात्रा करने के बाद जहां पर वो पहुंचता है वहां पर भी वह सुखी रहे, उसे मंगल कहा जाता है। तो ऐसा मंगल कार्य एक ही है त्वत् कथासु, हे प्रभु हे सुखदेव गोस्वामी, गजेंद्र मोक्ष की कथा ही एक ऐसी है जिस कथा सुन लेने के बाद जीवन जीते 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 भी सुख मिलेगा और इस जीवन के बाद मृत्यु के बाद जो गति होगी वह गति में भी नित्य सुख मिलेगा। भगवान की कथा और भगवान की भक्ति ऐसी है, जीवन जीने का भी उसमें आनंद आता है और जीवन जीने के बाद मृत्यु के बाद व्यक्ति सुखी हो जाता है, भगवान का धाम प्राप्त कर लेता है। इसलिए भगवान की भक्ति को मंगल कहा जाता है। स्वस्तयनम कहते हैं कि प्रभु यह गजेंद्र मोक्ष की कथा मंगलकारी है और शुभम शुभ है, शुभ अर्थात जीवन में शुभ ही शुभ देने वाली। यत्र यत्रोत्तम श्लोक भगवान गीयते हरि। तो सुखदेव गोस्वामी ने पूछा क्या गजेंद्र मोक्ष की कथा ही पवित्र है, और कोई कथा पवित्र नहीं है, और कोई कथा मंगलकारी नहीं है? तब परीक्षित महाराज कहते हैं नहीं नहीं प्रभु, यत्र यत्र उत्तम श्लोको भगवान गीयते हरि। नहीं प्रभु, जिन जिन कथा में भगवान श्री कृष्ण की कथा होती है वह सभी कथा मंगल करने वाली है, वह सभी कथा पवित्र करने वाली है। इसलिए मेरी एकमात्र इच्छा है कि अब आप मुझे गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाइए। यह मूल कथा, यह अंतिम कथा सुद गोस्वामी नैमिषारण्य में कर रहे हैं, इसलिए अगला श्लोक सुद गोस्वामी कह रहे हैं कि जब इस प्रकार से परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी के प्रति जिज्ञासा रखी तो परीक्षिते वस तू बादरायणी प्रायोपविष्टेन कथा सुचोदित। परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी के प्रति जब यह जिज्ञासा प्रकट की तो सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए। मुदा मूद का अर्थ होता है प्रसन्न हो जाना, आनंदित हो जाना। वास्तव में यहां पर एक प्रश्न होता है कि चलती कथा में कथा चल रही हो और यदि कोई बीच में डिस्टर्ब करे तो कथा करने वाला डिस्टर्ब हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। अब आजकल के साधारण वक्ता भी मान लीजिए कोई बच्चा डिस्टर्ब करता है या कोई चल हलन चलन करता है तो उसे देखकर वक्ता डिस्टर्ब हो जाता है या कभी कभी क्रोधित हो जाते हैं। गंगा के तीर ऊपर हजारों लोग इस कथा को सुनने वाले थे और सुनाने वाले परम वक्ता सुखदेव गोस्वामी धारावाहिक कथा कर रहे थे, परीक्षित महाराज ने उस कथा को रुका दिया प्रश्न करके। तो क्या सुखदेव गोस्वामी क्रोधित नहीं हुए होंगे? नहीं हुए। सुद गोस्वामी कहते हैं कि परीक्षित महाराज के इस कार्य से सुखदेव गोस्वामी क्रोधित तो हुए ही नहीं, उल्टा सुखदेव गोस्वामी मुदा वे प्रसन्न हुए। क्यों? क्योंकि परीक्षिते वस्तु बादरायणी प्रायोपविष्टेन कथा सुचोदित। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जानते थे कि परीक्षित महाराज ने 7 दिन और 7 रात से कुछ नहीं खाया है, कुछ नहीं पिया है और 1 सेकंड के लिए सोए भी नहीं है। 7 दिन 7 रात तक अनशन आमरण व्रत करने वाला व्यक्ति जिज्ञासा कर रहा है कि मुझे कथा सुनाइए, मैं कथा सुनना चाहता हूं। तो परीक्षित महाराज की इस जिज्ञासा को देखकर सुखदेव गोस्वामी प्रसन्न हुए। केवल सुखदेव गोस्वामी नहीं, मुनि नाम सदसी स्म शुणवताम, जितने भी मुनि जितने भी श्रोता थे वे सब लोग प्रसन्न हुए। साधु साधु, परीक्षित महाराज क्या सुंदर प्रश्न पूछा है आपने। सुखदेव गोस्वामी ने धन्यवाद किया कि परीक्षित वाच विप्रा प्रतिनंद पार्थिव, हे परीक्षित आपने जो यह प्रश्न पूछा है, आपने जो जिज्ञासा रखी है, निश्चित यह जिज्ञासा बहुत उत्तम है और इस जिज्ञासा से संसार के करोड़ों करोड़ों लोग इस जिज्ञासा से लाभ लेंगे। तो परीक्षित महाराज की जिज्ञासा से सुखदेव गोस्वामी कथा प्रारंभ करते हैं। आइए हम कथा प्रारंभ कर रहे हैं। इस कथा के अंत में भगवान से विष्णु गजेंद्र से कहते हैं कि हे गजेंद्र, यह कथा जिस जगह पर घटी है, यह घटना जिस जगह पर घटी है उस जगह का जो कोई व्यक्ति नाम लेता है, उस जगह का कोई मन में स्मरण करता है, वह व्यक्ति उस जगह का स्मरण करने से पवित्र हो जाएगा। सुखी हो जाएगा। जिस जगह पर गजेंद्र और यह मगरमच्छ का युद्ध हुआ उस जगह का स्मरण करके, इसलिए सुद गोस्वामी सबसे पहले उस जगह का जहां पर इस गजेंद्र और इस मगरमच्छ की घटना घटी उस घटना का उस प्लेटफॉर्म का वर्णन कर रहे हैं कि वह जगह कैसी थी। तो आइए उस जगह पर अपने मन को लेकर चलिए। श्री शुकवाच कथा प्रारंभ। आसीत गिरिवरो राजन त्रिकुट इति विश्रुत क्षीर देना वृत श्री मान्यो जना युत मुच्छित। कहते हैं कि हे राजन, शीरो देना वृत, शीर सागर नाम का एक सागर है। शीर, शीर का अर्थ होता है दूध। हमारे इस पृथ्वी लोक के ऊपर अन्य सात लोक है, उसके ऊपर एक सागर है, उसे शीर सागर कहा जाता है। और यह सागर जैसे यहां का सागर समुद्र आपने देखा है खारे पानी से बना हुआ है, लेकिन यह शीर सागर दूध से बना हुआ है। इसमें केवल दूध ही दूध है। आप लोग सोचेंगे प्रभु जी क्या बोलने लगे हैं, दूध का भी सागर होता है। एक बार यह प्रश्न यशोदा मैया को कृष्ण ने भी पूछा। भगवान यदि ऐसा प्रश्न पूछे तो हमारे मन में हो तो इसमें कोई दोराई नहीं है। घटना इस प्रकार से है, आज से 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण छोटे से बालक थे और मैया यशोदा उसे खिला रही थी, रो रहे थे। तो माता तो प्रयास करती है कैसी भी करके बच्चे को शांत रखने का। तो मैया बाहर प्रांगण में बैठी थी, रात का समय था, चांदनी बहुत सुंदर थी, पूनम का दिन होगा उस दिन। तो कृष्ण रो रहे थे, मैया यशोदा आप क्या करूं इसको शांत रखने के लिए। तो मैया ने दिखाया, देखो कृष्ण ऊपर कितना सुंदर चंद्रमा है, कितना सुंदर खिलौना ऊपर देखो है, देखो। कृष्ण उस चंद्रमा को देखकर हंसने लगे, रोना बंद कर दिया। तो कृष्ण ने कहा कि मैया मैया मुझे उस फल को खाना है। कृष्ण ने सोचा कि ये फल है। तो मैया ने कहा, कृष्ण ये फल नहीं है, ये तो खिलौना है, इसे खाया नहीं जाता है, इसे देखकर केवल खेलना चाहिए, बस प्रसन्न होना चाहिए। तो कृष्ण ने दूसरी जीत पकड़ी कि मैया मैया मुझे इस खिलौने से खेलना है, मुझे ला कर दो। एक तो रोते हुए कृष्ण को शांत किया, अब कृष्ण ने दूसरी जीत पकड़ी, मैया मुझे चांद खिलौना चाहिए, मुझे चांद खिलौना ला कर दो, मैया मुझे चांद खिलौना ला कर दो। अब मैया ने सोचा चांद कैसे ला कर दो इसे। मैया ने कहा, देखो इतना खिलौना घर पर है, आप खेलो, चांद को क्यों मांग रहे हो। नहीं मैया मुझे चांद खिलौना चाहिए। क्या करे कृष्ण और जोर जोर से रोने लगे, नहीं मुझे चांद खिलौना ला कर दो, क्या करे। तब मैया ने एक काम किया, एक बड़ा सा कथरोट पात्र लेकर आई और उसमें पानी भरा और पानी भरकर कृष्ण के सामने रखा। देखो देखो कृष्ण, देखो चांद आ गया नीचे जमीन पर, क्योंकि वो चंद्रमा का प्रतिबिंब पानी में गिर रहा था। तो कृष्ण को कहा, देखो कृष्ण चांद खिलौना मैंने लाकर दिया तुम्हें। अच्छा मैया, कृष्ण हंसने लगे और हंसकर जैसे ही उस पानी में कृष्ण ने उंगली डाला तो वो चंद्रमा बिल्कुल ऐसे फैलने हिल गया। फिर से रोने लगे, मैया मैया ये तो डुप्लीकेट है, चाइना का माल है, नहीं मुझे वो चांद चाहिए, मुझे वो चांद चाहिए, चांद खिलौना चाहिए। देखो कृष्ण वो चांद तुम्हें क्यों चाहिए, उसमें तो दाग लगा हुआ है और तुम्हें पता है वो चांद शिव जी के लिए है, हमारे लिए नहीं है। अच्छा मैया शिव जी को क्या करना है उस चांद को। देखो कृष्ण बहुत समय पहले की बात है, एक बार शीर सागर में समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन से शिव जी के लिए समुद्र मंथन से विष निकला और विष को शिव जी ने धारण कर लिया। और उसके बाद जब इस समुद्र मंथन से चंद्रमा निकला तो वह शिव जी को दे दिया गया ताकि वह शीतलता, विष पिया है तो उसे शीतल करे। तो शीर सागर में समुद्र मंथन हुआ और उससे यह चंद्रमा निकला और शिव जी को दिया गया। अच्छा माँ, यह शीर सागर कहां पर है। कृष्ण, शीर सागर बहुत ऊपर है। अच्छा ये क्षीर सागर कैसा होता है मैया? कृष्ण, ये क्षीर सागर दूध का बना हुआ है। अच्छा मैया, दूध का बना हुआ है, तो फिर मैया उसके लिए कितनी गैया लगी होगी उस क्षीर सागर को भरने के लिए। हमारे घर पर तो 9 लाख गैया हैं, फिर भी एक नदी भी नहीं बनती है। तो मैं यह कह रहा हूं, भगवान भी ऐसी जिज्ञासा करते हैं तो मनुष्य लोक में यह प्रश्न हो कि दूध का समुद्र कैसा होगा, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, परंतु यह सत्य है। क्षीर सागर, केवल क्षीर सागर नहीं, शास्त्र में भागवत में वर्णन है एक मधु का भी सागर है। मधु अर्थात हनी, एक गन्ने के जूस का सागर है, एक ऐसा सागर है जिसमें केवल घी ही घी है, शुद्ध घी, घी का सागर भी है, एक जामुन के रस का भी सागर है। आप लोग सोचेंगे कि क्या प्रभु जी बोल रहे हैं, ये सत्य है। भले आज के वैज्ञानिक इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं, परंतु भागवत और गीता इस बात का साक्षी है। तो क्षीर सागर के बिल्कुल बीचों बीच, क्षीर सागर के बीच में एक टापू था, एक आइलैंड था, और उस पर शिरो देना वृत त्रिकुट इति विश्रुत, और उस टापू में त्रिकुट नाम का एक प्रसिद्ध पर्वत था। इस पर्वत को त्रिकुट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पर्वत में तीन बड़ी बड़ी चोटियां थी। ऐसे तो बहुत सारी चोटियां थी, परंतु तीन लंबी लंबी चोटी थी, इसलिए त्रिकुट इनका नाम हुआ। और विश्रुत, श्रुत का अर्थ होता है विख्यात, और वी का अर्थ होता है विशेष रूपेण, संसार में सभी लोग इस पर्वत के बारे में जानते थे। श्री मान्यो जनायुत, और वह पर्वत कितना ऊंचा था? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वह पर्वत 10,000 योजन ऊंचा था। 10,000 योजन अर्थात 80,000 माइल वह पर्वत की हाइट थी। तावता विस्तृत पर्यक त्रिभिशुरो पयो निधिम दिश खम रोच यान नस्ते रोप्या यस हिरण्यमय। देखिए वह पर्वत जहां पर यह गजेंद्र की घटना घटी, वह कहां पर, कैसी जगह पर यह घटना हुई, वह सुनिए। वह जो पर्वत था, वह पर्वत की जो तीन चट्टाने थी वह किसकी थी? तो कहते हैं पर्वत की एक चट्टान लोहे की थी, एक चांदी की थी और एक सोने की थी। लोहा, चांदी और सोना, यह तीनों से यह पर्वत बना हुआ था। और यह पर्वत जितना ऊंचा था 80,000 माइल, उतना चौड़ा भी था। तावता विस्तृत पर्यक, उतना चौड़ा भी था। अन्यश्च ककुभ सर्वा रत्न धातु विचित्रते नाना द्रुम लता गुल्मे निषदो जीर रामबल। उस पर्वत के कंदराओं में, उस पर्वत के आजू, उस पर्वत के ऊपर बहुत सारे बहुत सुंदर वृक्ष थे, और पर्वत के नीचे कहते हैं कि पर्वत के चरणों को समुद्र क्षीर सागर का जल धोया करता था। अर्थात पर्वत के आजू बाजू में क्षीर सागर का जल स्पर्श होता था, और उस पर्वत की कंदराओं में पर्वत के नीचे कई सारे रत्न समुद्र छोड़ देता था। रत्न धातु विचित्र आते, अनेक प्रकार के रत्न समुद्र छोड़ता था, और उस पर्वत के ऊपर पर्वत में से कई सारे झरने भी खलखल 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 करते हुए बहते थे। सचावन निज्यात नाम गृह समन्तात अपयूर्मि भी करोति श्यामलां भूमि हरि मकर ताश्म भी। समुद्र का जल उस पर्वत को स्पर्श होता था, तो समुद्र का जल उस पर्वत को स्पर्श होने से वहां पर पर्वत के पत्थर का रंग श्याम हो गया था, श्याम वर्ण का, और बहुत सुंदर समुद्र की लहरें वहां पर वहां से बहती थी, और इतना सुंदर वातावरण वहां का, इतना सुशुद्ध और सुंदर वातावरण था, इसलिए ऐसे वातावरण का को भोगने के लिए बड़े बड़े देवता वहां पर जाया करते थे। जैसे छुट्टियों के दिन में हम नेशनल पार्क जाते हैं, कुछ लोग महाबलेश्वर जाते हैं, कुछ लोग कश्मीर जाते हैं, तो मनुष्य तो यहां पर नहीं जा सकते हैं, परंतु बड़े बड़े लोग कौन कौन जाते थे? कहते हैं सिद्ध, जो सिद्ध लोग थे, चारण, गंधर्व, विद्याधर, महोरगे, किन्नर, अप्सरा, ये सब लोग इस पर्वत का एटमोस्फियर, इस पर्वत का वातावरण का आनंद लेने के लिए जाया करते थे। बहुत सुंदर वातावरण था। और वहां जाकर क्या करते थे तो कहते हैं यत्र संगीत, वहां जाकर गंधर्व लोग मृदंग लेकर और कुछ गंधर्व हाथ में माइक लेकर, देवता लोग हाथ ऊपर करके झूमते हुए और अप्सरा लोग नाचते हुए उस त्रिकुट पर्वत पर कीर्तन किया करते थे। बहुत सुंदर कीर्तन होता था वहां पर। ये गंधर्व देवता इत्यादि जब बाहर जाते हैं तो पिकनिक करने नहीं जाते हैं, कीर्तन करने के लिए जाते हैं। कहते हैं यत्र संगीत ना देना तद गृह मर्षयाम अभी गर्जंती हरय श्लाघिन परशंकया। और ऐसा कीर्तन करते थे, ऐसा कीर्तन करते थे, उस पर्वत के ऊपर जितने जितने हिंसक प्राणी थे, सिंह और बाघ जैसे प्राणी भी उस कीर्तन में आते थे और उस कीर्तन में आकर नाचने लगते थे। और वहां पर कुछ अप्सराएं जब उस नदी में स्नान करती थी, सरोवर में स्नान करती थी, तो देवताओं के शरीर में अद्भुत सुगंध आती है और अप्सराएं अपने शरीर में केसर का और चंदन का लेप लगाती हैं। तो स्नान करने के कारण वहां पर बहुत सुंदर सुगंध फैलती थी और वहां के सारे विस्तार में अच्छी अच्छी सुगंध फैलने लगती थी। सुंदर सुंदर वृक्ष वहां पर लगे हुए थे। वृक्ष का नाम आगे सुखदेव गोस्वामी देते हैं, तस्य द्रोण्याम भगवतो वरुणस्य महात्मन उद्यान मृतु मन नाम आक्रिडम सूर्योषाम। तो ये त्रिकुट नाम के पर्वत में एक ऐसा उद्यान था, एक बगीचा था और यह बगीचा था भगवान के परम भक्त वरुण देव का। वरुण जो समुद्र के देवता है, समुद्र देव वरुण का बगीचा इस त्रिकुट पर्वत पे था और इस बगीचा का नाम था ऋतुमत उद्यान। जैसे हम वीर सावरकर उद्यान है वैसे ऋतुमत उद्यान नाम का एक बगीचा था। सर्वतो अलंकृतम दिव्ये नित्य पुष्प फलद्रुमे। इस ऋतुमत उद्यान में, ऐसा मत समझे यहां पर जो गार्डन बगीचा होता है ऐसा उद्यान था, ये वरुण देव का उद्यान बहुत बड़ा था, बहुत बड़े जंगल के समान बहुत बड़ा उद्यान था। और इस उद्यान में सर्वतो नित्य 24 12 महीने में सुंदर सुंदर फूल उगा करते थे, सुंदर सुंदर पेड़ और पौधे उगा करते थे। कौन से फूल थे तो कहते वहां पर कल्प वृक्ष पर बहुत सुंदर फूल होते थे, पारिजात वृक्ष होते थे, गुलाब के फूल होते थे, अशोक और चंपा के वृक्ष होते थे, चूते पियाले पनसे, वहां पर बहुत सुंदर आम के वृक्ष थे और पनसे आम्रफल आम्रात केरपी, वहां पर आम्रा के वृक्ष थे, क्रम के सुपारी के वृक्ष थे, नारियल के वृक्ष थे और खजूर के और अनार के वृक्ष थे। ऐसा मत समझिए हमारे पृथ्वी में जो खजूर के वृक्ष होते हैं कांटे वाले, वहां पर कांटा होता ही नहीं है। मधु के शतालेश्च तमाले सरसार्जुने, कहते वहां पर ताड़ के वृक्ष थे, अर्जुन के वृक्ष थे, रीठा के, गुलर के, पाकर, बदर के, पलाश के और चंदन के वृक्ष थे। पिचु मदे कोविदारे सरले सुर दारु भी दाक्षे शुरम भाजाम्बु भीवरबत यक्षा भयामले। और भी बहुत बहुत वृक्ष का नाम ले रहे हैं। वहां पर अंगूर के वृक्ष थे, ईख और केला के वृक्ष थे, जामुन के वृक्ष थे, रुद्राक्ष के वृक्ष थे और हरड़े के हरड़ के वृक्ष थे और आंवला के वृक्ष थे। बिल्वे कपीथ जंबे वृतो भल्लात कादि भी कस्मिन सरह सुवी पुलम लसत कांजन पंकजम। वहां पर नींबू के वृक्ष, नींबू से युक्त बिलावा, अब ये सब वृक्ष के नाम भी हम नहीं जानते हैं। वास्तव में पद्म पुराण में कहा गया है 20 लाख प्रकार के वृक्ष होते हैं और उसमें से प्राय 10 या 50 हजार वृक्ष हमारे पृथ्वी पर हो गए और जितने वृक्ष हैं ये स्वर्ग लोक में त्रिकुट पर्वत पर अलग अलग जगह पर सब वृक्ष हैं। पृथ्वी पर तो बहुत कम वृक्ष हैं, तो ये यहाँ पर बड़े बड़े वृक्ष हैं। और मत्स्य कच्छा, अब सुखदेव गोस्वामी अपने कैमरे को वहां पर लेकर जाते हैं जिस लेक में, जिस छोटे से तालाब में, जिस सरोवर में वह गजेंद्र हाथी और मगरमच्छ का युद्ध हुआ था, उस तालाब की बात कर रहे हैं कि उस तालाब में मत्स्य, मछली, कच्छप, कछुए, मगरमच्छ, मगरमच्छ थे और पद्म, बहुत सुंदर सुंदर कमल के फूल थे। इसलिए गजेंद्र वहां पर फूल अर्पण कर कमल का फूल भगवान को दे सका। कदम के वृक्ष उनके तट पर लगे हुए थे। कुंदे कुरुब काशो के शशि के कुजकेर गुदे कुब जके सुवर्ण युथी भी नाग पुन्ना गजादि भी। वहां पर जितने भी कमल के वृक्ष उस नदी में थे, कमल के फूल, वह सोने के तमाम समान चमक रहे थे। अद्भुत अद्भुत ये सब अद्भुत बातें हैं। मल्ली काशल पत्रश्च मालवी जाल कादि भी शोभितम तीर जैशार्ये नित्य तू बिरलद्रु में। बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष, सुंदर सुंदर फूल, सुंदर सुंदर पानी, सुंदर हवा, सुंदर वातावरण, हरा भरा खिला हुआ, खलखल खलकर आवाज आ रही है। बहुत सुंदर प्रकृति का आनंद, सौम्य वातावरण वहां का है। और ऐसे सुंदर वातावरण में, ऐसे ऋतुद्वीप नामक उद्यान में एक समय की बात है, तत्र एकदा। अब सुखदेव गोस्वामी मूल कथा प्रारंभ कर रहे हैं। तत्र एकदा तद गिरिकान नाश्रय करेणु रे भी ना युद्ध पश्चरन सकंटकम कीच के वेणु वेत्रवद विशाल गुल्मम परुजन वनस्पति। प्रारंभ कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी के ऐसे ऋतुद्वीप नामक उद्यान में एकदा एक समय की बात है, गजेंद्र नाम का एक हाथी जो पूरे त्रिकुट पर्वत का राजा था, बड़े बड़े सिंह और बाघ भी गजेंद्र जब अपने घर से निकलता था तो यह सिंह और बाघ अपनी अपनी गुफा में छिप जाते थे और जब यह चलता था तो अकेला नहीं चलता था, अपनी पत्नी और अपने बच्चों को साथ में लेकर हजारों हजारों पत्नी और हजारों बच्चे उनके साथ चलते थे। और सुखदेव गोस्वामी इसका इंट्रोडक्शन देते हैं कि जब यह गजेंद्र जिस जंगल के रास्ते से चलता था, विशाल गुल्मम प्ररुजन वनस्पति, उस जंगल की जितनी भी वनस्पति, जंगल की झाड़ियों को बिल्कुल हाईवे बनाकर चलता था। जिस रास्ते से यह गजेंद्र निकल जाता था वह रास्ता हाईवे के समान क्लियर हो जाता था, जंगल में भी हाईवे बन जाता था। गजेंद्र का इतना प्रताप था, जैसे सिंह के डर से सियाल और चूहे डर जाते हैं, वैसे गजेंद्र के डर से बड़े बड़े शेर और बड़े बड़े सिंह डर कर भाग जाते थे। गजेंद्र के डर की बात छोड़ दीजिए, गजेंद्र की गंध आ जाए कि गजेंद्र आज यहाँ पर निकलने वाले हैं, तो ये बड़े बड़े हिंसक प्राणी कहीं किलोमीटर दूर भाग जाते थे। तत्र एकदा एक समय की बात है, गजेंद्र इस ऋतुद्वीप उद्यान की सैर करने के लिए अपने बच्चे और अपनी पत्नी के साथ निकला और निकल कर क्या किया ये हम अगले बुधवार से प्रारंभ करते हैं।